भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह यानी I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को उपयोगी बताते हुए कहा कि इसने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। I2U2 की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा कहते हैं,
The ITU2 was conceptualized during the meeting of the foreign ministers of the four countries which was held in October last year. It is broadly aimed at encouraging joint investments in six mutually identified areas: water, energy, transportation, space, health and food security. Through this grouping, the intention principally is to mobilize the private sector capital and deploy it for very many areas of economic cooperation. The summit had a very positive, constructive, and I would even say tangible agenda, which included discussions on promoting specific projects, specific joint projects.
संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में फूड पार्क स्थापित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। विनय क्वात्रा इस बारे में बताते हुए कहते हैं,
The first project relates to the food corridor. Under this project, the UAE intends to invest roughly $2 billion to develop a series of integrated food corridors across India, which would deploy climate smart technologies to reduce food wastage and spoilage, conserve fresh water at the same time, and also employ renewable energy sources. In this endeavor, the US and Israeli private sectors would lend their expertise as a partners in this project and would also look at offering innovative solutions that contribute to the overall sustainability of the project. India welcomed the project and will provide appropriate facilitation towards its successful operation.
शिखर सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से पैदा हुए हालातों को लेकर भी नेताओं ने आपस में चर्चा की। श्रीलंका में गहराते राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच भारत ने साफ किया है कि वह श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका के हालात पर भारत की नजर है। आपको बता दें कि गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद छोड़ने के पहले ही श्रीलंका छोड़ दिया था। भारत ने उन खबरों को बेबुनियाद बताया है जिसमें राजपक्षे को भारत से मदद मिलने की बात कही गई थी। और अब चर्चा लोकसभा सचिवालय द्वारा तैयार असंसदीय शब्दों की सूची की, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। असंसदीय शब्दों की सूची में जुमला जीवी, नौटंकी, तानाशाह, तानाशाही, भ्रष्ट जैसे शब्दों को शामिल करने का विरोध कांग्रेस पार्टी सहित विरोधी दलों ने किया है। इन शब्दों का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं,
आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है, फिर भी वहां पे वो आंदोलनजीवी वर्ड लाके लोगों को मजाक बना रहे थे। लोकतंत्र में जुमला देना वो जायज नहीं है, और इस देश के आज के गृहमंत्री ने खुद किया कि चुनाव के वक्त हम कहते हैं ना, वो करना थोड़ा ही होता है, वो तो जुमले होते हैं, वो बात हम उनको सुनाते हैं। आज आप आजादी आने से आज तक में किसी भी असेंबली ने या लोकसभा या राज्यसभा के हमारे जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में जुमले जीवी, जुमलेबाज, वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। भ्रष्ट कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। आप झूठ बोल रहे हो, आप नौटंकी कर रहे हो बार बार। जब यही लोग ऑपोजिशन में थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी, ये सारे लफ्ज हमारे खिलाफ यूज होते थे, तब देश की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या संसदीय लफ्ज में अनपार्लियामेंट्री वर्ड में ये कोई लफ्ज नहीं लगता था इनको।
विपक्षी दलों के विरोध के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सफाई देते हुए कहा है कि किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया, चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता, और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद में इस प्रक्रियाओं से चलती है।
राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति मजबूत होती जा रही है। शिवसेना के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है और दोनों दल झारखंड में गठबंधन सरकार चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के फैसले के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की स्थिति और कमजोर हो गई है। और अंत में थोड़ी चर्चा मंकी पॉक्स वायरस की, जिसका भारत में पहला मामला केरल से सामने आया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि संक्रमित व्यक्ति यूएई से लौटा था। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है, इन सभी पर निगरानी भी रखी जा रही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।